वस्त्रों में तुरंत उस सरोवर के अंदर छलांग लगा दिए, तैरते हुए गए और अपने पोते के रूप को पकड़कर बाहर खींचा। तट पर आए, आश्चर्य हुआ कि उसका पोता नहीं था, पोते का एक पुतला था। क्रोधित हुए, कहने लगे, बीरबल ये किसकी करामात है? बीरबल ने कहा, ये मेरा कार्य है, ये मैंने काम किया है। अकबर ने कहा, क्यों इस प्रकार का दुस्साहस क्यों किया तुमने? बीरबल ने कहा, मैं केवल आपको अपनी बात का प्रमाण देना चाहता था। आपने कल मुझसे यह प्रश्न किया कि हमारे भगवान स्वयं क्यों आते हैं, अपने और किसी सेवक या चपरासी को क्यों नहीं भेज देते, अन्य किसी प्रतिनिधि को क्यों नहीं भेज देते? इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है आज। अरे जब आपका पोता डूब रहा था, जब आपने देखा कि आपका पोता डूब रहा है, सरोवर के चारों तरफ आपके इतने सारे सैनिक थे, आप किसी सैनिक को कह देते जाओ छलांग लगाओ? अरे आप सम्राट हो, आप स्वयं बिना वस्त्रों को उतारे अपनी राजसी पोशाक में छलांग लगाए और इस जल में निमग्न हो गए और तैरकर उसके पास गए और उसको बचा के लाया। क्यों राजन, और किसी को भेज सकते थे, क्यों नहीं भेजा? तो अकबर के मन में ये बात आ गई, हाँ भाई, क्योंकि मैं अपने पोते से प्रेम करता हूं, और जब जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके विषय में हम चिंता करते हैं, जिसकी रक्षा का हमने उत्तरदायित्व लिया है, जब वह बुरी तरह पीड़ित हो तो कैसे हम हाथ पसार कर बैठ सकते हैं? स्वाभाविक है कि हम उसकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए भगवान का इस जगत में अवतार होता है, जीवों के उद्धार के लिए, अधर्मों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और उसके पश्चात अपनी लीला सुधा का एक ऐसा अपार धनराशि वह छोड़ जाते हैं जिसका भविष्य काल में भक्तगण कीर्तन श्रवण इत्यादि के करने के माध्यम से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसी संदर्भ में भगवान कश्यप के पुत्र के रूप में वह प्रकट होते हैं। कश्यप और अदिति दोनों भगवान की सेवा पूजा करते हैं और भगवान का वरदान प्राप्त कर तयो व्रत यज्ञ को संपन्न करते हैं अदिति, और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु स्वयं उनके गर्भ में जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान अदिति के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णन आता है, यद्यत् विभूर्भाति विभूषणायुधैर् अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयत्यपि बभूवते नैव स वामनोवतु सम्पश्यतो दिव्यगतिर् यथानत। वर्णन आता है कि भगवान अव्यक्त हैं, लेकिन अपने भक्तों के समक्ष व्यक्त हो जाते हैं, और भगवान अपने विविध प्रकार के आभूषणों के साथ, विविध प्रकार के आयुधों के साथ प्रकट हो गए। और बभूवते नैव स वामनोऽवतु, वामन देव के रूप में एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में नटवेशधारी, जिस प्रकार नट अपने वस्त्रों को बदलकर, अपने पोशाक को बदलकर लोगों के सामने विविध प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। अब वामन के रूप में वो प्रकट हुए थे। संपश्यतो दिव्य गतिर् यथा नट, तो कोई भी व्यक्ति भले उस नट को देखे, लेकिन देख के समझ जाता है कि वास्तव में इसके पीछे व्यक्ति तो वही है। तो इन सभी अवतारों के स्रोत हैं कृष्ण, कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं, और अब यही कृष्ण वामनदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। क्यों प्रकट हुए हैं? वह तो अपने भक्त पर विशेष अनुकंपा प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो वर्णन आता है कि उनके प्रकट होते ही साथ वामनदेव के अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न किए, कश्यप मुनि ने उनको जनेऊ प्रदान किया, सूर्यदेव ने स्वयं गायत्री मंत्र उनको प्रदान किया और इसके पश्चात पृथ्वी देवी ने उनको मृग चर्म प्रदान किया और ब्रह्म दंड लाकर सोमदेव ने प्रकट किया। कुबेर ने उनको भिक्षा के लिए पात्र प्रदान किया और फिर पार्वती देवी ने उनको सर्वप्रथम भिक्षा प्रदान किया। इंद्रदेव ने उनको छतरी दिया और इन विविध प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर वामन देव अब तैयार थे अपनी लीला को संपन्न करने के लिए, अपनी लीला को प्रदर्शित करने के लिए, अपने भक्त बलि महाराज पर अनुकंपा प्रदर्शित करने के लिए वह तैयार थे। बलि महाराज ने देखा कि यह समय उपयुक्त है और उस समय भृगु कच्छ नाम के स्थान पर नर्मदा नदी के तट पर वह एक विशाल यज्ञ संपन्न कर रहे थे और उस समय भृगु वंश के कुछ ब्राह्मणों के संरक्षण में वे इस यज्ञ को संपन्न कर रहे थे। उस समय वामन देव ने निश्चय किया कि अब वह बलि महाराज की ओर जाएंगे। तो वर्णन आता है, जगाम तत्र अखिल सार संवृतो भारेण गां सन्नमयन पदे पदे। अब वामन देव जो कि एक छोटे से बटू के रूप में थे, अपने सुंदर पाद को रखते हुए, अपने चरण पदों को रखते हुए, धीरे धीरे लघु पद रखते हुए उस ओर गए बलि महाराज के यज्ञ की ओर। और यहां वर्णन आ रहा है, जगाम तत्र अखिल सार संवृतो, अर्थात भगवान श्री वामन देव का रूप संपूर्ण जगत के अनेक अनेक ऐश्वर्यों की खान थी। सार संवृतो, जितने इस जगत के ऐश्वर्य हैं वह सभी वामन देव के रूप में विद्यमान थे। और आगे वर्णन आ रहा है, भारेण गां सन्नमयन पदे पदे। प्रत्येक पद के साथ जब वामन देव आगे बढ़ रहे थे, उनके देह के भार से वह पृथ्वी को नीचे दबा रहे थे, अर्थात ऐश्वर्यों का जोर इतना अधिक था, ऐश्वर्यों का भार इतना अधिक था कि पृथ्वी भी अंदर धसी चली जा रही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सभी ऐश्वर्यों के स्रोत हैं, सभी ऐश्वर्य उनसे ही उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है कि उन ऐश्वर्यों को समझने का प्रयास करें। भले भगवान एक छोटे से वामन के रूप में आए थे, एक बटू के रूप में आए थे, लेकिन उनके अंदर सारे ऐसे ऐश्वर्य विद्यमान थे। भले ही वामन देव अब जाकर याचना करने वाले हैं, लेकिन किसी को यह सोचना नहीं चाहिए कि वामन देव के अंदर कोई कमी थी इसलिए वह बलि महाराज के पास याचना करने जा रहे हैं। नहीं, वह सर्वगुण संपन्न थे, पूरी तरह से पूर्ण थे, हर प्रकार के गुण उनमें थे, लेकिन फिर भी अब वह अपनी लीला प्रदर्शित करने, बलि महाराज का उद्धार करने बलि महाराज की ओर चल पड़े हैं। और वर्णन आता है कि जैसे ही अपने तेजस्वी रूप के साथ वह बलि महाराज उस यज्ञशाला में पहुंचे तो उनके रूप लावण्य और तेज को देखकर जितने वहां ब्राह्मण गण थे और बलि महाराज इत्यादि सभी आश्चर्यचकित हो गए। वर्णन आता है कि वामन देव के रूप और तेज ने सूर्य को, चंद्र को और अन्य ग्रहों को भी तिरस्कृत कर दिया और वो वहां पे जितने ब्राह्मण गण थे जो बड़े ओजस्वी और तेजस्वी थे वह भी सभी तेजहीन हो गए। और तभी वह सभी आपस में चर्चा करने लगे, अरे देखो तो यह दूर से तेजस्वी ओजस्वी प्रकाश आ रहा है, कहीं सूर्यदेव स्वयं तो यहां प्रकट नहीं हो गए? क्या ये चार शरद कुमार आ गए हैं या फिर कहीं अग्निदेव के साक्षात स्वरूप तो नहीं? प्रकार वह सारे ब्राह्मण आपस में परस्पर चर्चा कर रहे थे कि वहां उपस्थित वह ब्राह्मण कौन था, उसका परिचय क्या था। जब इस प्रकार तर्क वितर्क करके वह किसी निष्कर्ष पर आ रहे थे, तब तक वामन देव बड़े प्रेम से बलि महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। बलि महाराज ने अपने दोनों हस्तकमलों को जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उनको उपयुक्त आसन प्रदान किया, पाद प्रक्षालन किया और उनके पाद प्रक्षालित जल को अपने सर पर छिड़का, क्योंकि बलि महाराज इस सिद्धांत को भली भांति जानते थे कि भगवान के चरण कमलों से ही गंगा जी की उत्पत्ति होती है। जिस गंगा जी को महादेव स्वयं अपनी जटा पर धारण करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, ऐसे भगवान श्री विष्णु यहां पर प्रकट हुए हैं। उनके पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य तो किसी जीव को करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात ही प्राप्त होता है। तो बलि महाराज बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न हृदय के साथ अब अपने भावनाओं को वामनदेव के समक्ष प्रकट करने लगे। वह कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपके आज यहां पर उपस्थित होने से मेरे सारे पूर्वज कृतार्थ हो गए, मेरा परिवार पवित्र हो गया और ये मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया है। आप यहां पर प्रकट हुए हैं, इससे अधिक सौभाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती। आप मुझ पर यहां कृपा करने आए हैं, अब बताइए कि मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूं, मैं आपको किस प्रकार का दान प्रदान कर सकता हूं, कृपा करके इस विषय में मुझे ज्ञान दें। और वो कहते हैं, दाम कांचनम गुणवत् धाम मृष्टम तथा नपेयम उतवा विप्रकन्याम ग्रामम समृद्धान तुरदान दजानवा प्रथम तथा रहा तमसम प्रतीक्षा। कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप कौन सी वस्तु स्वीकार कर, मैं आपको दान में क्या दू। अरे वामनदेव जी, कृपा करके आप बताइए, बस अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, तत्क्षण आपकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। अपार राशि में ऐश्वर्यों का भंडार हमारे पास है, हम संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस जगत का सारा ऐश्वर्य हमारे ही अधीन है। मांगिए, याचना कीजिए, जो याचना करेंगे वही आपको प्राप्त होगी, बताइए। तो कहते हैं, दाम कांचनम गुणवत् धाम मृष्टम। अरे वामनदेव जी, क्या लेंगे आप। गाम, अरे कितने सारे गांव हैं, पृथ्वी है, धरती है, प्रॉपर्टी, क्या आपको धरती चाहिए, लैंड चाहिए, कितने एकड़ चाहिए, कहां का चाहिए, किस लोक का चाहिए, बताइए। अब ये जो प्रस्ताव बलि महाराज वामनदेव के समक्ष रख रहे हैं, इसको सभी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि वास्तव में ये लिस्ट जो वामनदेव के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, हम भी जीवन में इस लिस्ट में से बहुत कुछ चाहते हैं और हमारे मन में कई बार भावना उठती है कि कभी हमारे सामने आकर कोई इस प्रकार की याचना क्यों नहीं करता, इस प्रकार का ऑफर कोई क्यों नहीं देता। तो वास्तव में सुनिए कि किस प्रकार का प्रस्ताव वामनदेव के समक्ष रखा गया। गाम कांचनम, आपको पृथ्वी चाहिए, धरती चाहिए, कांचनम सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे मोती चाहिए, बहुमूल्य रत्न चाहिए, सोने के पीछे लोग पागल होते हैं। गाम कांचनम गुणवत् धाम, अच्छे अच्छे घर चाहिए, वेल फर्निश्ड हाउस, आपको बढ़िया मकान चाहिए, राजमहल चाहिए, हर प्रकार के राज सिंहासन और विविध प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर। धाम मृष्टम तथा नपेयम उतवा विप्रकन्यम। या फिर आप कहते हो कि मैं तो केवल सरल ब्रह्मचारी हूं, तो आपको सुस्वादु व्यंजन चाहिए, खाने के लिए कुछ पकवान चाहिए, बताइए 56 भोग मंगा दूं, किस लोक का खाना चाहेंगे, ब्रह्मांड के किस कुक का बनाया हुआ खायर खाना चाहेंगे, इंद्रलोक से कुछ मंगवा दूं, चंद्रलोक से कुछ मंगवा दूं, खाएंगे तो क्या खाएंगे, तथान पेयम या कुछ पेयजल, कुछ ठंडा कुछ गर्म क्या लेंगे। उत्तमा विप्रकन्याम, ये आप कहते हो मेरा पेट तो बहुत भरा है, लेकिन समस्या है कि अभी भी ब्रह्मचारी हूं, अविवाहित हूं। अच्छा, विवाह की इच्छा है तो कोई सुंदर स्त्री मंगा दो, विप्र कन्या कोई ब्राह्मणी मंगा दो, ब्राह्मण की कन्या मंगा दो, किस प्रकार के करुणी युवती से आप विवाह करना चाहोगे बताइए। अरे एक बार वर्णन तो कीजिए, इच्छा मात्र कीजिए, तुरंत आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। या वो कहते नहीं ये भी नहीं चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, ग्रामान समृद्धान। अच्छा, बहुत सारे गांव, समृद्धशाली ग्राम जिस पर आप अपनी सत्ता जता सको, जिसके आप राजा नृत बन सको, या तुरगान गजान वा, या आपको हाथी और घोड़े चाहिए। और उस समय यातायात के यही साधन थे, जितने हाथी और जितने घोड़े किसी राजा के पास होते उसकी शक्ति का वह प्रमाण था। तो आज की तारीख में ये मर्सिडीज या लिमोजीन या अलग अलग प्रकार की गाड़ियां, तो कोई आपको आके कहे बोलिए कितनी गाड़ियां आप लेंगे, जितनी गाड़ियां मांगोगे हम आपको देंगे, और उस गाड़ी में भविष्य में पेट्रोल भी जीवन भर हम ही भरेंगे, ले लीजिए। तो इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखे तो नकार पाना बहुत कठिन है। तुरगान गजान हुआ और कह रहे हैं रथम तथारहातम संप्रतिच्छ, या सुंदर सुंदर रथ आपको चाहिए तो क्या चाहिए। इस प्रकार बलि महाराज वामन देव के समक्ष अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वामन देव कुछ याचना करने आए हैं, और एक दानी क्षत्रिय होने के नाते उनका एक कर्तव्य बनता था कि वो कुछ दान में दें। तो दान देना बहुत आवश्यक है, और भगवत गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण वर्णन करते हैं कि दान इस प्रकार का होना चाहिए कि दूसरों को इससे लाभ प्राप्त हो, दूसरों के उद्धार का वो कारण बने, और देने वाला भी दान देकर शुद्ध हो जाए। और विशेषकर हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए और धन को शुद्ध करने के लिए दान देना बहुत आवश्यक है। काले न स्नान शौचाभ्याम संस्कारे जितेन्द्रिया, वर्णन आता है कि अलग अलग वस्तुओं को शुद्ध करने के अलग अलग मार्ग होते हैं। पदार्थ काल से शुद्ध होते हैं, वस्तुएं घिसने से शुद्ध होती हैं, मन तपस्या से शुद्ध होता है, और धन द्रव्येण आतात्म शुद्धया, दान देने से द्रव्य शुद्ध होते हैं या धन शुद्ध होता है। इसलिए वर्णन आता है कि हमें इस प्रकार की भावना जागृत करनी चाहिए जैसे बलि महाराज के मन में भावना थी। लेकिन कलयुग में कई बार लोग इस प्रकार से प्रामाणिक रूप से कुछ देना नहीं चाहते। वर्णन आता है एक युग था सतयुग, जो कुछ भी लोग कमाते थे वह भगवान को दे देते थे, भगवान के लिए ही समर्पित करते थे। फिर आया त्रेता युग, कई बार लोग त्रेता युग में इस प्रकार से एक रेखा खींचते थे, रेखा खींचने के बाद जो उनकी धनराशि होती वो धनराशि लेकर वह ऊपर फेंकते थे, और जो कुछ भी नीचे गिरता जो दाईं ओर गिरता रेखा के वो भगवान को देते, और वो बाईं ओर गिरता वो स्वयं रख लेते। फिर द्वापर युग में वो कई बार इस तरह से एक गोलाकार बनाते सर्कल, और फिर जो भी धनराशि थी वो ऊपर फेंकते, जो अंदर गिरता स्वयं रखते, बाहर गिरता वो भगवान को दे देते। कलयुग में कई बार लोग धनराशि रखते हैं, धन को ऊपर फेंकते हैं और बोलते जो कुछ भगवान पकड़ ले वो भगवान का ऊपर, जो गिर गया वो सब मेरा। तो इस तरह से दान की कुछ परिभाषा ही बदल गई, और क्योंकि ऊपर कुछ पकड़े ने नीचे गिर गया, कहते ठीक है भगवान ने क्रिकेट नहीं खेला लगता है, कुछ कैच नहीं कर पाया, सब अपना ही हो गया। अर्थात वास्तव में ये भावना समय के साथ कम होती चली जा रही है, लेकिन ये दूसरा युग था, व्यक्तित्व कुछ दूसरे हैं, और इसलिए वह अपना सर्वस्व भगवान को दान के लिए देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि कृपा करके आप कुछ दान लीजिए। तो वामन देव इस प्रकार से उनके प्रस्ताव का उत्तर देते हैं। वचस्तवैता जनदेव सोनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगवासम पराये पिता महाकुला वृद्ध प्रशांत। वो कह रहे हैं हे बलि महाराज, आपके ये शब्दों की जय हो। वचस तव एकद नरदेव सुंदरतम, आपने जिन वचनों का प्रयोग किया है, आपकी वाणी में अनेक सद्गुण मैं देख रहा हूं। सुंदरतम ये सत्य का सार इसमें है, कुलोचितम आपके महान कुल के गरिमा के अनुसार है, धर्मयुतम धर्म के सिद्धांतों के और निष्कर्षों के अनुरूप है, यशस्करम और आपके कुल के यश को बढ़ा रहा है, और यस्य प्रमाणम भृगव संपराये और आपका चरित्र बहुत ही गौरवशाली है, क्योंकि वर्तमान में आप भृगुकुल के ब्राह्मणों के द्वारा निर्देशित हैं और अपने भविष्य के जीवन के लिए आप अपने पितामह प्रहलाद महाराज के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। महानता प्राप्त करने के लिए तो बहुत आवश्यक है, आप जीवन में महान बनना चाहते हो तो इन दो बातों को याद रखें, अपने वर्तमान की और भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। वर्तमान शास्त्र के द्वारा निर्देशित होने चाहिए और भविष्य महान भक्त के द्वारा निर्देशित होने चाहिए। इस प्रकार आप इस बात की जानकारी होनी चाहिए, पिता महान कुलवृद्ध प्रशांत, पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का वर्णन कर रहे हैं, वो ये कि आपके ये पितामह अर्थात प्रहलाद महाराज, जो कि बलि महाराज के पिता विरोचन और उनके पिता थे प्रहलाद महाराज, उनका वर्णन आ रहा है कुलवृद्ध अर्थात बड़े वयोवृद्ध हो गए थे, लेकिन ऐसी वृद्धावस्था में भी वह उस राजमहल में निवास कर रहे थे। तो कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार प्रश्न कर सकता है, ये क्या बात हुई, प्रहलाद महाराज तो इतने महान भक्त हैं और वृद्धावस्था में भी वह राजसी ठाट भाट में निवास कर रहे हैं, अपने परिवार के निकट संबंधियों के साथ पारिवारिक जीवन का सुकून और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने वानप्रस्थ नहीं लिया, ये तो लोगों के समक्ष एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया है। अरे प्रहलाद महाराज महाजन हैं, और महाजनों का एक कर्तव्य बनता है कि जन सामान्य के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करें। ये कैसा आदर्श है, कुल वृद्ध इतने वृद्ध हो गए फिर भी घर पर है, फिर भी राजमहल में है, अपने पोतों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो तुरंत इस शब्द का प्रयोग किया गया है, पिता महाकुल वृद्ध प्रशांत, प्रशांत है वो। प्रशांत का अर्थ क्या है, प्रशांत का अर्थ है जो इस भौतिक जगत के वेग से बवंडर से विचलित न हो, जो भौतिक इच्छाओं से परे हो, उसे कहते हैं प्रशांत। प्रहलाद महाराज भौतिक जगत के वेग के प्रभाव से परे थे, इसलिए उस अवस्था में वो निवास कर पा रहे थे। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कि कि जिस प्रकार के नियम सामान्य व्यक्ति के लिए लागू होते हैं वह महान भक्तों के लिए लागू नहीं होते, क्योंकि महान भक्त क्योंकि जैसे नारियल के भीतर का भाग जब सूख जाता है तो सफेद भाग नारियल से अलग हो जाता है, और जब आप नारियल को कान के पास हिलाओगे तो अंदर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अर्थात वह नारियल के अंदर है, लेकिन नारियल के अंदर होते हुए भी क्योंकि वह पक गया है, सूख गया है, नारियल से वह लगा नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ है, अनासक्त हो गया है, कट गया है, अलग हो गया है। उसी प्रकार महान भक्तगण भक्ति में जब परिपक्व हो जाते हैं, इस जगत में निवास करते हुए भी इस जगत से भिन्न रहते हैं, अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, जगत का और प्रकृति के गुणों का उन पर तनिक मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। जो सामान्य लोगों के लिए नियम लागू होते हैं, महान भक्तों के लिए वह नियम लागू नहीं होते। यथा कोई रास्ते पर ट्रक जा रहा हो और लाल सिग्नल आने पर वह ट्रक रुक जाए, और फिर ट्रक वाला ऊपर देखे कि आसमान में एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ रहा है, और ट्रक वाला चिल्लाए पुलिस वाले को, अरे देखो ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, लाल सिग्नल है यहां पर, लेकिन वो हवाई जहाज उड़ रहा है, देखो तो मारो सीटी उसको। तो ट्रैफिक पुलिस वाला बोलेगा, अरे मूर्ख, मैं केवल ये रास्ते के लिए ट्रैफिक पुलिसमैन हूं, वो भी केवल इस रास्ते में ही सीटी बजा सकता हूं, और तू वहां ऊपर हवाई जहाज की बात कर रहा है। यहां के सिग्नल और वहां के सिग्नल दूसरे हैं, जो सिग्नल यहां पर लागू होते हैं वहां पर लागू नहीं होते, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई दूसरे नियम है, कोई दूसरे स्रोत हैं, उनके लिए सिग्नल ही दूर है, इसलिए दोनों की तुलना मत करो। अर्थात जो सामान्य नवदा भक्त है, जो वैदिक भक्ति के अंतर्गत है, उसके लिए कुछ अन्य नियम अपेक्षित हैं, और भगवान के उच्च कोटि के भक्त जो गुणातीत हो गए हैं और जो भगवत भक्ति के उच्चतम स्तर पर लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, जो इस धरातल से उठ चुके हैं और भगवत धाम की ओर उड़ान भर रहे हैं, उनके लिए इस जगत के सामान्य जीव से अपेक्षित नियम लागू नहीं होते। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए भले ही कुछ लोग प्रहलाद महाराज के उस उदाहरण को देखकर उनकी निंदा कर सके, आलोचना करें कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से वृद्धावस्था में भी घर पर रह रहे थे, नहीं जी, जब हवाई जहाज उड़ता है तो कार, ट्रक और बस वाले को चुप रहना चाहिए, उसका जब सिग्नल आए वह वहीं रुक जाना चाहिए, और ऊपर के जहाज को देखकर वो सोचे मैं भी उड़ूंगा, और वो उड़ने का प्रयास करे तो केवल उसको पकड़ा जाएगा और फाइन भरा जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए वर्णन आता है कि वामन देव जी इस प्रकार बलि महाराज की स्तुति करते हैं और उनके प्रस्ताव को विचार विमर्श करते हुए उनको उत्तर देते हैं। हे बलि महाराज, आपके परिवार में आज तक कभी कोई संकुचित विचारधारा का व्यक्ति हुआ ही नहीं। आपके परिवार में जितने भी क्षत्रिय नरेश हुए हैं वह सभी संकीर्णता से परे थे, सभी उदार चेता थे, बड़ी महानता और उदारता के साथ उन्होंने दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को विशेष रूप से दान दिया और क्षत्रियों को युद्ध भूमि में हर प्रकार से युद्ध के लिए ललकारे जाने पर युद्ध किया और संतुष्ट किया। आपके कुल में सर्वप्रथम नाम मुझे याद आता है हिरण्याक्ष का, जो इतने शक्तिशाली थे कि गर्भोदक सागर में जब धरती गर्भ में गिर गई थी तब भगवान वराहदेव उसको ऊपर लेकर आए और तब हिरण्याक्ष ने उनको ललकारा। भगवान वराहदेव का उनके साथ युद्ध हुआ और घमासान युद्ध होने के पश्चात येन केन प्रकारेण भगवान वराहदेव ने उनको नष्ट किया। उनके वध करने के पश्चात भगवान वराहदेव को भी लगा कि मैंने कुछ तो किया है। उसके पश्चात उनके भाई हिरण्यकशिपु, ओहो, उनके क्रोध के क्या कहने, क्रोध की चरम सीमा को प्राप्त कर वो भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के निवास स्थान की ओर भागने लगे आक्रमण करने की इच्छा से। तब भगवान विष्णु ने विचार किया कि यदि मैं अपने निवास स्थान में बैठा रहूंगा तो हिरण्यकशिपु का मुझ पर आक्रमण हो जाएगा, इससे श्रेष्ठ यही होगा कि मैं हिरण्यकशिपु के हृदय के भीतर जाकर अंतरस्थित हो जाऊं, क्योंकि हिरण्यकशिपु बहिर्मुखी है इसलिए हृदय के अंदर कभी ढूंढेगा नहीं और मैं सुरक्षित रहूंगा। ऐसा विचार कर विष्णु भगवान हिरण्यकशिपु के समक्ष गए और अपने आकार को क्षुद्र बनाकर उनकी नासिका के भीतर से जाकर उनके हृदय में स्थित हो गए। और तब हिरण्यकशिपु विष्णु के उस क्षेत्र में जाकर ढूंढ कर जब विष्णु नहीं मिले क्रोधावेश में आकर धसमस मचाने लगे। सामान्य व्यक्ति कुछ समय के पश्चात अपने क्रोध का त्याग करता है, लेकिन यह हिरण्यकशिपु के हृदय में क्रोध की भावना इतनी तीव्र थी मृत्यु पर्यंत उसने अपने क्रोध की भावना को नहीं त्यागा। विरले ही ऐसे जीव पाए जाते हैं जो इतने प्रचुर मात्रा में क्रोध की भावना को हृदय में पालते हैं। महान थे आपके ऐसे पूर्वज और उसके पश्चात आपके पिता विरोचन। अरे ब्राह्मणों को दान देने में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, इतने महान थे वो। और उनके पदचिन्हों में चलते हुए आप महान राजा बलि अब मेरे समक्ष खड़े हैं और मेरे समक्ष ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि मैं कुछ याचना करूं। लेकिन हे बलि महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, जहां तक मेरा प्रश्न उठता है मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि आप मुक्त हस्त दान दे सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं। बस मेरी एक इच्छा है, मेरी एक आशा है और मैं वो आपको व्यक्त करता हूं। और वो कहते हैं तस्मात्वत महिमीशात वृणेहं वरदर्शभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे बलि महाराज, अरे आप इतने महान क्षत्रिय राजा हैं, तस्मात्वत महिमीशात आप इस संपूर्ण जगत के अधिनायक हैं, नियंत्रक हैं, सारी संपत्ति आपके ही तो अधीन है ना। लेकिन वृणेहं वरदर्शभात, मैं भली भांति जानता हूं कि आप बड़े दानी हैं, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। मेरी क्या आकांक्षा है, मेरी क्या इच्छा है? पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, केवल मुझे अपने पद के तीन पग चाहिए, इस पृथ्वी पर अपने पैर के माप के तीन पग आप प्रदान कीजिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल तीन पग। आप मुझे इस संपूर्ण जगत की प्रत्येक ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए तैयार हैं, ये पूरा प्रस्ताव मेरे समक्ष आपने रखा है, मैं इसके लिए आभारी हूं, लेकिन हे वरिष्ठ मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, केवल तीन पग और कुछ नहीं। और वो कहते हैं नान्यते कामये राजन वदान्यात् जगदीश्वरात् नैन प्राप्नोति वै विद्वान् यावत् अर्थ प्रतिग्रह। यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक कोई मांग करे तो इस प्रकार के अनावश्यक मांग करने के परिणाम में उसे बहुत क्लेश झेलना पड़ता है। इसलिए मैं केवल आपसे ये तीन पग मांगता हूं। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि वामन देव एक आदर्श याचक का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। याचक को चाहिए कि आवश्यकता से अधिक कभी मांग न करे। किसी भी व्यक्ति के अनेक अनेक पुण्य, अनेक शालीन गुण केवल लोभ के प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार किसी रूपवान व्यक्ति का केवल एक सफेद दाग से संपूर्ण रूप नष्ट हो सकता है, उसी प्रकार लोभ के एक बिंदु से अनेक अनेक सद्गुण नष्ट हो सकते हैं। इसलिए याचक को लोभ नहीं करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही याचना करनी चाहिए। एक भिखारी एक याचक इस प्रकार एक जमींदार के पास गया। जमींदार के घर के सामने खड़ा होकर जमींदार सामने बैठा हुआ था कुर्सी पर, तो याचक ने भिखारी ने कहा, अरे जमींदार जी, पूरे गांव में मैंने प्रत्येक घर में भिक्षा मांगी है, लेकिन कहीं किसी को ऐसा सुंदर वस्त्र पहनकर बैठा हुआ नहीं देखा हूं। आपने जो वस्त्र पहने हैं ना, लाजवाब है, क्या कहूं मैं इन वस्त्रों के। तो जमींदार ने कहा जोर से, अजी सुनती हो, एक किलो चावल लाना। तो याचक ने कहा, और जमींदार जी, जहां तक आपका ये घर है ना, अरे गांव में हर घर को मैंने देख लिया, लेकिन ऐसा घर और ऐसा डिजाइन है ना, दूसरे किसी का है ही नहीं। तो जमींदार चिल्लाता है, अजी सुनती हो, जरा दो बोनी गेहूं के ले आना। याचक के मन में उमंग की भावना छा जाती है, वाह भाई कुछ कुछ आ रहा है। तो कहते, अरे जमींदार जी, आपके घर के बाहर जो बगीचा है ना, अरे लाजवाब है भाई, इतने सुंदर फूल यहां खड़े खड़े मैं उसको सूंघ पा रहा हूं, और बाकी लोगों के फूल तो ऐसे कि मुंह के अंदर डालो, नाक के पास लाओ, तब भी कुछ होता नहीं, जबरदस्त है ये। तो चिल्लाता है, अजी सुनते हो, मेज पर मेरी घड़ी रखी है, वो घड़ी भी जरा लेके आना। याचक का उमंग और बढ़ रहा है, उत्साह और बढ़ रहा है, इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। कहता है, और फिर क्या कहने, ये बाहर जो आपकी गाड़ी रखी हुई है, अरे क्या जबरदस्त गाड़ी है ये, मैं कहता हूं कि अमेरिका में भी ऐसी गाड़ी नहीं दिखती होगी। तो जमींदार ने कहा, जी सुनती हो, जरा अंदर मेरे सोने का चेन पड़ा है, वो भी लेके आना। तो याचक तो बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच गया था, बोला आज एक ही दिन में इतना लॉटरी लग गया, एक ही घर पर आकर। तो प्रतीक्षा करने लगा, ये बैठकर पेपर पढ़ रहे हैं जमींदार। अब याचक आधा घंटा हो गया, अभी तो कुछ अंदर से आया नहीं। कहने लगा, सर जमींदार जी, कुछ कुछ आपने मंगाया था याद है क्या, वो अभी आपने वो गेहूं और चावल और वो चेन वगैरह भी जोर से बताया ना, वो शायद अंदर से अभी आया नहीं। तो जमींदार ने कहा, देखो भाई, तुमने मुझे संतुष्ट किया, कैसे, शब्दों से। मैंने तुमको कैसे संतुष्ट किया, शब्दों से, हिसाब बराबर है ना, चल भाग यहां से, और क्या चाहिए। अर्थात जगत में जैसी भावना होगी वैसे लोग भी मिलेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि आवश्यकता से अधिक याचना करने लगेंगे तो लोभ की कोई सीमा नहीं। जगत में काम और क्रोध की सीमा देखी गई है, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं देखी गई। क्रोध उठता है, जिस पर क्रोध आए उसको दो तमाचा लगा दिया, दो गाली दे दी, तो पश्चाताप होने लगता है, क्रोध कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। कभी फास्टिंग कर लिया या भूख प्यास से पीड़ित हो गए तो काम वासना को भी भूल जाते हैं, लेकिन लोभ ऐसा है कि लोभ कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो काम क्रोध और लोभ में लोभ बड़ा ही शक्तिशाली वैरी है, शत्रु है, इससे बचना है, इसको नियंत्रित करना है। और वामन देव के इस याचना से हम बहुत कुछ इस विषय में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो वर्णन आ रहा है कि जब वास्तव में बलि महाराज को अप्रत्यक्षतः इंगित कर रहे थे वामन देव कि देख बलि, तेरे पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है और तुम्हारी आवश्यकता से कुछ अधिक ही तुम रखे हो, इसलिए उचित होगा कि तुम इसको वितरित कर दो। आवश्यकता से अधिक धन संचय उचित नहीं, संपत्ति अर्जन उचित नहीं, इस प्रकार वह संदेश देना चाह रहे थे। बलि महाराज
वामनदेव की बात सुनकर उत्तर देते हैं,
अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति स्वार्थं प्रति अभिधोयता।
अरे ब्राह्मण, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो? वाचस्ते सम्मता, आपकी वाणी को सुनकर प्रतीत हो रहा है कि यह शास्त्र सम्मत है, लेकिन
त्वं बालो बालिशमति,
आप एक सामान्य बालक की तरह, अल्पज्ञ की तरह बात कर रहे हो।
स्वार्थम प्रति अबुद्धोयता,
अपने स्वार्थ के प्रति आप जानकारी नहीं रखते, आप अपने स्वार्थ से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, आप जानते नहीं कि आपका वास्तविक स्वार्थ क्या है। तो सामान्य व्यक्ति यही विचार करेगा कि जब इस प्रकार के ऐश्वर्यों को स्वीकार करने का कोई प्रस्ताव दे और वामन देव इन प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं तो क्या यह बुद्धिमानी का कार्य है? कोई विचार करेगा कि क्या भरोसा भविष्य में ऐसा अवसर मिले न मिले? अरे जब चांस मिला है तो हाथ मार लो, तब फिर भविष्य में रहेगा नहीं रहेगा क्या भरोसा? कल के दिन बलि सब कुछ हार जाएगा, उसके पास वो खुद कंगाल हो जाएगा, खुद याचक बन जाएगा। जब है उनके पास, अजय प्रस्ताव दे रहा है तो ले लेना चाहिए ना। तो कलयुग में इस प्रकार की बात समझ में नहीं आती और हम विचार करते हैं कि ऐसा ये बर्ताव कैसे कर पाए। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं,
स्वार्थम प्रति अबुधो यथा,
कि वास्तव में बलि महाराज ने सही कहा, वामन देव अपने स्वार्थ के प्रति पूरी तरह से अनासक्त थे। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कभी अपना स्वार्थ नहीं देखते, भगवान केवल भक्तों का परमार्थ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों का संतोष, भक्तों का हित देखते हैं, वह अपने भक्तों के निरंतर सनातन हितैषी हैं और इसीलिए भक्ति के द्वारा वह जीते जाते हैं।
एवं संदर्शिता यंग हरिनाभृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे।
दामोदर लीला के अंत में शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि यशोदा माई ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सियों से बांध लिया और भगवान श्री कृष्ण भी उन रस्सियों के द्वारा बंधने के लिए तैयार इसलिए हुए क्योंकि वो इस सिद्धांत को निरूपित करना चाहते थे, इस सिद्धांत की घोषणा करना चाहते थे कि
एवं संदर्शिता यंगा हरिनाभृत्यवश्यता,
कि कृष्ण भक्त वत्सल है। कृष्ण इस बात को दिखाना चाहते थे कि मैं भक्तों के भक्ति के द्वारा बंध जाता हूं। कृष्ण को बांधना है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है।
स्ववशेनापि कृष्णेन,
तो यशोदा माई भक्ति के बंधन में कृष्ण को बांध ली।
यस्येदं सेश्वरं वशे,
अन्यथा परम पुरुषोत्तम अजीत भगवान श्री कृष्ण को बड़े बड़े देवता गण भी नियंत्रित नहीं कर सकते। वह कृष्ण जिनके नियंत्रण के अधीन महादेव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अनेक अनेक देवतागण और जीव रहते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण यशोदा माई जो कि ब्रज की एक सामान्य गोपिका गृहिणी थी उनके वश में आ गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपना स्वार्थ नहीं देखते।
स्वार्थम प्रति अभिभूयता,
वो केवल भक्तों का संतोष देखते हैं। और कृष्णा ने देखा कि यशोदा माई किस प्रकार भक्ति से मुझे खींच रही है। वही कृष्ण भक्ति के बंधन में फंस कर अर्जुन के सारथी बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ वो हांक रहे थे, पीछे पैर से लात मारता है, अर्थात ड्राइवर को पीछे से लात गिरती है, तो दाएं ओर लात पड़ा तो ड्राइवर समझ जाता है कि अब मुझे रथ दाएं ओर खींचनी है, दाएं ओर लात गिरी तो समझ गए बाएं ओर खींचनी है, पीठ पर लाद गए, समझ गए अब मुझे रथ रोकना है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने भक्तों की लातों को स्वीकार कर रहे थे सारथी बनकर। आज की तारीख में यदि कोई आप टैक्सी में बैठो और टैक्सी वाले को पीछे से सर पे मारो, रुक जाओ, या दाई ओर कान के नीचे बजाओ, जरा दाई ओर ले चलो, तो क्या वो स्वीकार करेगा? कोई सामान्य व्यक्ति स्वीकार करेगा? भगवान अपने भक्त की इस प्रकार की चोट स्वीकार कर रहे थे क्योंकि वह स्वार्थम प्रति अबोधनीय था। अपने स्वार्थ का त्याग कर केवल भक्तों का ही हित देखते हैं और कुछ नहीं। और वर्णन आता है कि एक बार एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलने उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य गए, और जब मंत्रिमंडल के सदस्य उनके कमरे के बाहर खड़े थे तो उन्होंने देखा कि बहुत समय तक प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकलने की आवाज है। धीरे से वो कमरे के भीतर झांक कर देखते हैं और अंदर बड़ा अद्भुत दृश्य था। दृश्य क्या था? दृश्य ये था कि प्रधानमंत्री घोड़े बने हुए हैं, दो हाथ उनका सामने है, घुटने पर बैठे हैं और उनकी पीठ पर उनका पोता सवार है, उनके सर के पीछे के बाल पकड़कर वो खींच रहा है और कह रहा है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और ये मंत्री प्रधानमंत्री को उस हालत में देखकर हंसने लगे और विचार करने लगे कि देखिए इतना बहुमूल्य समय है लेकिन पोता उसके कंधे पर उसके पीठ पर बैठकर चढ़ा हुआ उसको घोड़ा बना लिया है, लेकिन वही कार्य मंत्री नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री विचार करे यही मौका है, मैं भी चढ़ जाता हूं उनके पीठ पर, दो चार मैं भी बाल खींच लेता हूं और अपना पुराना वैर ठीक कर लेता हूं तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा यदि वह ऐसा कोई कार्य किया तो वास्तव में भगवान के भक्तों का भगवान के साथ एक प्रेम का संबंध होता है और इसलिए भगवान अपने स्वार्थ को त्याग कर भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान स्थापित करते हैं। अब अपने भक्त बलि के प्रति वह प्रेम का आदान प्रदान स्थापित करने वाले हैं, इसलिए बलि महाराज परोक्ष रूप से इस बात को इंगित करते हुए कह रहे हैं स्वार्थम प्रति अबोधयता। अरे केवल तीन पद धरती मांग रहे हो, अपने स्वार्थ के विषय में जानकारी है कि नहीं? इस प्रकार वह प्रश्न कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर सुनकर हम सभी का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जो बलि महाराज का यह संशय है कि वामन देव केवल तीन पद धरती क्यों मांग रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर वामन देव अभी बताएंगे कि मैं तीन पद धरती क्यों चाहता हूं, तीन से अधिक धरती नहीं चाहता। इस विषय में जो उनके मन की भावनाएं हैं वह हमारे जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखती हैं। तो वामन देव का उत्तर क्या है वह हम अब कीर्तन के पश्चात चर्चा करेंगे। सब लोग जोर से उच्च स्वर में हमारे साथ अब कीर्तन कीजिए। सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
रामो राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
Thank you. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
तो अब वामनदेव जी के बड़े ही महत्वपूर्ण संदेश महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम आप सुनेंगे। बलि महाराज का प्रस्ताव सुनकर वामनदेव कहते हैं
यावंता विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्यामदितेन्द्रिया ते शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा।
हे राजन, आपने असीमित मात्रा में धन राशि मुझे प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव रखा है, लेकिन मुझे वो स्वीकार नहीं। क्यों?
यावंतो विषया प्रेष्ठा,
जितने भी विविध प्रकार के इंद्र विषय हैं,
त्रिलोक्यम अजितेन्द्रिया,
तीनों लोकों में नाना प्रकार के जो इंद्र विषय उपलब्ध हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं, इन समूचे इंद्र विषयों को एकत्र किया जाए। अजितेन्द्रिय, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया है, तो जगत का प्रत्येक विषय वस्तु प्राप्त होने पर भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता।
ते शक्नुवन्ति न सर्वे प्रतिपूरयितुं
राजन, संतोष करना बहुत आवश्यक है, संतोष की महिमा अपार है। और अब संतोष के विषय में वामन देव अनेक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। वामन देव के इन शब्दों पर गौर करें, क्योंकि कलयुग असंतोष का युग है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असंतोष की भावना है, विविध स्थानों में, विविध परिस्थितियों में, विविध परिवारों में, विविध भाषाओं को बोलते हुए हम रहते हैं, लेकिन हम सभी के भीतर एक समान बात विद्यमान है, हम सभी असंतुष्ट हैं। राजा हो या रंक, सत्तारूढ़ी हो या सत्ताहीन, पुरुष हो या स्त्री, प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट है। तो यहां पर वामन देव बता रहे हैं संतोष कैसे प्राप्त किया जाए, संतोष प्राप्त करने का सूत्र क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको संतोष चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, कैसे प्राप्त हो सकता है? यह एक मार्ग है, एक प्रक्रिया है, यह अभ्यास करने योग्य है, बिना अभ्यास के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, प्रचुर मात्रा में धन संचय करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार हृदय के भीतर प्रचुर मात्रा में संतोष का संचय करने के लिए आपको प्रयास करना है। बिना उचित प्रयास के यह स्वयमेव आपके हृदय में प्रकट नहीं हो जाएगा। इसलिए संतोष क्या है इसको समझना है, और इसको प्राप्त कैसे करें इस बात को भी समझना है। यावंतो विषया श्रेष्ठ त्रिलोक्यम अजितेन्द्रिय। जब तक इंद्रियों को हम नियंत्रित नहीं करते, तब तक ये विविध प्रकार की इंद्रियां हमें विविध दिशाओं में खींचती चली जाएंगी और हमारा मन निरंतर उद्वेगित रहेगा और भौतिक जगत के इस द्वंद से निरंतर हम प्रताड़ित रहेंगे। इसलिए वर्णन आता है कि इस जीव को पहले ही यह आवरण प्राप्त हो गया। भौतिक देह का आवरण प्राप्त करने के पश्चात यह जीव इस देह और इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यह वास्तव में उसके लिए एक नशे की अवस्था है। नशे में व्यक्ति अपने आप को कुछ और मान बैठता है, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा होते हुए भी अपने आप को शरीर मानता हूं और शरीर को तुष्ट करने के लिए विषय भोगों की लालसा से प्रत्येक विषय वस्तु का आखेट करने का प्रयास करता हूं। ऐसा क्यों? ये नशे की बात है। एक बार एक बंदर वन के भीतर भ्रमण कर रहा था। वन में वृक्ष के नीचे उसने एक बर्तन देखा और उस मटके के अंदर कुछ पदार्थ था, कुछ पेय पदार्थ था। क्योंकि वो बंदर था, उछलता हुआ वहां आया, मटके के अंदर देखा, चित्त आकर्षित हुआ, मटका उठाकर पीने लगा। अंदर मदिरा थी, मदिरे का असर बंदर पर हो गया। बंदर तो वैसे भी पहले ही छलांग लगाता था, पहले ही छलांग लगाने वाला बंदर जब मदिरा पान कर ले, सुरापान कर ले, उसके बाद क्या होगा आप विचार कर सकते हैं। पहले छलांग लगा रहा था, अब डबल छलांग लगाने लगा और इतना जोर जोर से ऊपर नीचे कूदने लगा। तब वहां पर एक छात्र आ गया और वो आयुर्वेद शास्त्र का छात्र था। अभी तक उसने डिग्री प्राप्त नहीं की थी, अभी पढ़ रहा था, पूरा डिग्री प्राप्त नहीं किया था और प्रायः ऐसी अवस्था में लोगों का उत्साह अधिक रहता है। तो वो वहां पर आ गया और उसने देखा कि बंदर ऊपर नीचे जोर जोर से छलांग लगा रहा है और विचार किया कि क्यों ऐसे कूद रहा है। तो पास में देखा तो मदिरा का वो मटका था तो समझ गया कि अवश्य इस बंदर ने मदिरा पान की है। तब इसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो अपना आयुर्वेद का किताब खोलता है और उसमें पढ़ने लगता है क्या लिखा है। और उसमें लिखा था कि जब बंदर इस प्रकार से मदिरा पान कर ले तो उसका नशा उतारने के लिए क्या करना चाहिए। एक मूल है जिसको कहते हैं जिनसेंग, उसको जिनसेंग खिला दो तो कुछ नशा उतर जाएगा। तो बेचारे छात्र परोपकार करने के लिए वन में ढूंढने लगा कि बंदर को जिनसेंग कहां से खिलाएं। ढूंढते ढूंढते उसको एक मूल मिल गया, जिनसेंग नहीं था वो जिंजर था, जिंजर अर्थात अदरक। तो उसने सोचा जिनसेंग तो नहीं मिल रहा, जिंजर ही ठीक है, क्योंकि ये भी जिन वो भी जिन, जिन जिन दोनों चलता है और स्टूडेंट के लेवल पे दिमाग ऐसा ही चलता है, इसने कभी किसी स्टूडेंट से ट्रीटमेंट न ले। तो उसने कहा जिनसेंग नहीं मिल रहा, जिंजर मिल गया, लेके आ गए और उसकी पुड़िया बना दी और बंदर को जिन के प्रकरण पकड़ा और उसका मुंह खोल के अंदर डाल दिया। बंदर तो पहले ही छलांग लगा रहा था, मदिरा पीकर डबल छलांग लगा रहा था, जब अदरक को चबाया तो पेड़ के सारे लेवल के ऊपर पहुंच गया बिल्कुल। और तब तक धीरे धीरे छलांग लगा रहा था, अब बड़े फ्रीक्वेंसी से छलांग लगाने लगा और बहुत ऊपर ऊपर तक छलांग लगाने लगा। तो वर्णन आता है कि आत्मा इस भौतिक जगत पे आकर इस देह को प्राप्त करके पहले ही हम नशे में हैं, पहले ही बंदर के समान हमारा मन विचलित रहता है। उसके बाद अनेक प्रकार के हमने भौतिक जो अपने भौतिक जगत की आसक्तियों को पालकर इस प्रकार के नशे की अवस्था में रहते हैं। और जब ऊपर से धन संपत्ति सम्मान ऐश्वर्य इत्यादि जब उसका नशा चढ़ता है तो हम और जोर जोर से उछलने लगते हैं। अर्थात इस भौतिक जगत में चाहे कुछ भी हम प्राप्त करें वह केवल हमारे विचलन को और बढ़ाता है, हमारी अशांति को और तीव्र करता है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी उन्मत्तता से मुक्त हो जाएं और अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। और जब तक इंद्र तृप्ति से मुक्त नहीं होते तब तक हम संतोष की भावना प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना अनिवार्य है, सेंस कंट्रोल। जब तक इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक संतोष की संभावना ही पैदा नहीं होती। इसलिए वहां पर वो कह रहे हैं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप, चाहे कितने भी विषय वस्तु प्रदान कर दें हम उसे संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तव में आत्मा को कोई और धन चाहिए और वो है कृष्ण प्रेम धन। और इस भौतिक जगत में ये संपूर्ण भौतिक जगत तो केवल रेगिस्तान की तरह है और इस रेगिस्तान में भागते भागते तीव्र गति से दीर्घ काल तक भागने के पश्चात किसी धावक को कोई आकर कहे कि मैं आपको आपके प्यास को बुझाने के लिए जल प्रदान करना चाहता हूं, अरे धावक कहे अच्छा जल लाओ, और आप कहते हो मुंह खोलो और मुंह खोलता है और एक बूंद जल आप ड्रॉपर में लाकर उसके मुख में डाल देते हो, लो एक ड्रॉप उसकी जीवा पर गिरता है। एक बिंदु जल से क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं, उसको तो चाहिए अपार मात्रा में जल। तो भौतिक जगत में आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जितने विषय वस्तु हैं ये सभी किसी काम नहीं आते। इसलिए भौतिक वस्तु चाहे हो न हो संतोष की भावना होनी चाहिए, और यदि संतोष की भावना न हो तो क्या होगा अगले श्लोक में वर्णन आता है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट विल हैपन, अगर संतोष की भावना नहीं है तो उसका परिणाम क्या होगा। कहते हैं यदृच्छयो पपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्ट त्रिभिर लोकैर अजितात्मा अभितेन्द्रिय। यदि हम संतुष्ट नहीं होंगे तो वर्णन आता है न संतुष्ट त्रिभिर लोकैः, तीनों लोकों में चाहे सारे विषय वस्तु भी आकर हमको प्रदान कर दिए जाए तो भी यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम सुखी नहीं हो सकते। तो आपके पास एक घर होगा, आपके पास एक गाड़ी होगी, आपके पास एक स्कूटर होगा, आपके पास एक वॉशिंग मशीन होगा, आपका एक बेटा होगा, आपके बेटे की फलाना फलाना शिक्षा हुई होगी, आपको नौकरी में फलाना फलाना पद प्राप्त हुआ होगा। हर परिस्थिति में व्यक्ति असंतुष्ट रहता है क्योंकि वह निरंतर उच्च कोटि की अपेक्षाएं करता रहता है और वह विचार करता है कि मैं तो जीवन में असफल हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये पद प्राप्त नहीं किया, मुझे तो ये पद प्राप्त करना चाहिए था। अरे देखो तो हमारे पड़ोसी को देखो, तो हमारे संबंधियों को, इनको देखो, उनको देखो, सबको देखो, कितना प्रगति किए हैं, कितना कुछ पाए हैं, हम क्या पाए। अर्थात कई बार हम जगत में, हम इस जीवन में ये नहीं देखते कि भगवान ने हमें क्या दिया, ये देखते हैं कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया और इसीलिए निरंतर असंतुष्ट रहते हैं। तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह समझे कि भगवान ने उसे क्या दिया है। एक व्यक्ति बेरोजगार था, एक सुंदर स्त्री से वो प्रेम करने लगा। स्त्री के पिता के पास जाकर कहने लगा, आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूं। पुत्र के पिता ने कहा कि आप क्या नौकरी करते हो? उसने कहा मैं बेरोजगार हूं। पिता ने कहा भाग जाए यहां से, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, विवाह करने का दुस्साहस करता है, किसने भेजा तुमको, भाग गए यहां से। भगा दिया। बेचारा दुखी था। उसका मित्र आया, कहने लगा दोस्त दुखी लग रहे हो, क्या बात है, क्या करो, उस स्त्री से विवाह करना था लेकिन बेरोजगार हो इसलिए विवाह नहीं करा रहे हैं। तो उनके मित्र गए और उस स्त्री के, उस लड़की के पिता के पास आग्रह करने लगे, देखिए साहब मैं आपके लिए प्रस्ताव लेके आया हूं। लड़के के पिता ने कहा क्या बात है, प्रस्ताव क्या है? उसने कहा मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं। तो उसके पिता ने कहा 1 करोड़ रुपए देते हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किस खुशी में? तो उसने कहा 1 करोड़ रुपए देता हूं, अपनी दाई आंख मुझे दे दो। आपकी दाई आंख है ना, निकालो उसको, दे दो मुझे, 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो पिताजी तब तक तो बात कर रहा था प्रेम से, तुरंत भाग कर अंदर गया, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, नौकरों को कहने लगा पागल आ गया, घर में भगाओ उसको, आंख वाख निकालने की बात कर रहा है वो, पता नहीं कहीं वो अपना प्रस्ताव सीरियसली एग्जीक्यूट कर दे तो मैं मर जाऊंगा। तो सारे सेवक जाके पकड़ लिए और कहने लगे भाग जाओ यहां से, मालिक ने कहा है भाग जाओ। तो वहां से चिल्लाने लगा, अरे सुनिए दूसरा एक प्रस्ताव है, 2 करोड़ दूंगा, दोनों आंखें दे दो, दोनों आंखें दे दो, 2 करोड़ दूंगा। तो ये पिता तो पागल ही हो गया, कहने लगा पता नहीं कहां से आ गया, आजकल पता नहीं पागल लोग रास्ते में घूम रहे हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं। तब वो दोस्त कहने लगा, अरे साहब अभी हाल ही में आपसे एक लड़का मिलने आया था, याद है, जो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता था? उसने कहा हाँ याद है, वही नालायक बेरोजगार था वो। तो दोस्त ने कहा आपको पता है वो करोड़पति है? हाँ करोड़पति है, उसने तो बताया नहीं मुझे, उसने तो कहा मैं बेरोजगार हूं। अरे उसकी 2 आंखें थी ना, 2 आंखें तो उसकी थी, एक एक आंख तो 1 करोड़ की है ना, आप 2 करोड़ में अपनी 2 आंख नहीं दे रहे हैं, उसकी दोनों आंखें स्वस्थ थी, ठीक तरह से वो देख पा रहा था, तो कम से कम 2 करोड़ का तो उसका प्रॉपर्टी है। और उसके साथ साथ उसके 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 1 सर था, 2 कान थे, टोटल प्रॉपर्टी एस्टिमेट कीजिए। तो फिर लोग क्यों चाहते हैं ये जानने कि कौन बनेगा करोड़पति? सभी है करोड़पति, भगवान ने सबको बनाया है करोड़पति, अर्थात ये जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो करोड़ों की संपत्ति देकर भी हम इसके बदले में कुछ नहीं देंगे। तो वास्तव में जो कुछ प्राप्त हुआ है इसके विषय में हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या दिया, अन्यथा संतुष्ट कभी नहीं हो सकते। इसलिए वर्णन आता है कि जब हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है तो इस भावना से संतुष्ट होकर ही वास्तव में हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले श्लोक में रावण देव बता रहे हैं कि संतोष की भावना को पालने का परिणाम क्या होता है। दो परिणाम होते हैं। यदि हम जीवन में संतोष को अधिक स्थान दें, संतोष का वर्धन करें, तो दो परिणाम प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम क्या वो कह रहे हैं, तुम सोयम संस्मृते हेतु असंतोषो अर्थ कामयो यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृत। यदि हम जीवन में संतुष्ट होंगे तो संतोषो मुक्तये स्मृत, ये संतोष मुक्ति का कारण बनती है, मुक्ति के मार्ग पर हमें स्थित करती है। तुम सोयम संस्मृते हेतु असंतोषो अर्थ कामयो, और अर्थ और काम के विषय में हम असंतुष्ट रहेंगे तो हम निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते चले जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना संभव नहीं जब तक असंतोष की भावना है। इसलिए जो कुछ भी यथाशक्ति प्राप्त हुआ, वर्णन कर रहे हैं यदृच्छयो उपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृत, यह संतोष की भावना हमारे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए हृदय में जो इच्छा है, वर्णन आता है इच्छाएं असीमित हैं। बाहर से केवल कुछ इच्छाएं दिखती हैं, लेकिन इच्छाएं असीमित मात्रा में स्थित हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको कहा जाए एक ईंट का टुकड़ा उठाना आसान है कि कठिन, एक ईंट का टुकड़ा आपको उठाना है, क्या ये आसान काम है कि कठिन काम है? आसान है कि कठिन? आसान है। एक ईंट का टुकड़ा उठाना आसान है, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि इस ईंट के टुकड़े को निरंतर उठाकर कभी उसे धरती पर मत रखो, सुबह उठते ही साथ ईंट का टुकड़ा उठाया और दिन रात उसे अपने हाथ में रखो, खाते समय, सोते समय, ऑफिस जाते समय, स्नान करते समय, हर परिस्थिति में जब ईंट के टुकड़े को अपने साथ ही रखना पड़ता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन में थक जाओगे कि ये ईंट हमेशा मेरे साथ रहता है, अरे कभी तो इसको छोड़ो भाई। अर्थात एक ईंट का टुकड़ा जब निरंतर आपको उठाना पड़ता है तो वह छोटा सा ईंट का टुकड़ा भी बहुत भारी पड़ जाता है। उसी प्रकार आपको कई बार लगता होगा कि ये तो मेरी एक तुच्छ इच्छा है, इनमें थोड़ी सी इच्छाओं को पालने में क्या समस्या है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि उन इच्छाओं को यदि पालोगे तो ये इच्छाएं ऐसी ईंट की तरह ही प्रभावशाली हैं। सर्वप्रथम देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन क्योंकि निरंतर वह मन में बसी रहती है, वह हमारे उत्साह को बुरी तरह से क्षति पहुंचाती है और धीरे धीरे हम थक जाते हैं। इसीलिए इन इच्छाओं से मुक्त होना है। जिस प्रकार कोई कैदी देरियों के माध्यम से बाहर के मुक्त जीवन को देखता है, लेकिन मुक्त जीवन को देखता हुआ भी वह उस कैद खाने से बाहर कदम नहीं रख पाता, उसी प्रकार बद्धावस्था में जीव मुक्ति का मार्ग जानकर भी, गीता भागवत के ज्ञान को सुनकर भी अपने भौतिक इच्छाओं की देरियों के तले बंधा रहता है और वह इसके बाहर नहीं निकल पाता। ये इच्छाएं उसको बांध कर रखती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मुक्ति के मार्ग पर स्थित होने के लिए संतोष को प्राप्त करें। जितना संतोष की भावना की वृद्धि होगी उतना ही हम मुक्ति के निकट आएंगे। और वर्णन आता है जब हम संतोष को पालेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। इसलिए वर्णन आता है यदृच्छा लाभ पुष्टस्य विक्रो वर्धस्य वर्धते। जब हम संतोष की भावना को पालते हैं तेजो विप्रस्य वर्धते, विप्र का किसी ब्राह्मण का तेज आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तत्प्रशाम्यति असंतोषात् अम्बसा आशु आशु शुक्षरैः। और यदि असंतोष की भावना में वृद्धि होगी तो उस ब्राह्मण की शक्ति उसी प्रकार क्षीण होगी जैसे किसी अग्नि पर जल छिड़कने पर उसकी ज्वलन शक्ति समाप्त होती है। उसी प्रकार से हृदय में मन में असंतोष की भावना को पालने से धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक विकास नष्ट होता है, आध्यात्मिक उन्नति कम होती है। वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण इस प्रकार तपस्या कर रहे थे। योगी जी एक गमछा रखते थे और उस गमछे में ही स्नान करके बाहर निकलते और दूसरा गमछा सुखाने के लिए रख देते। एक दिन जब वह तपस्या कर रहे थे देखा कि एक चूहा आकर उनके उस गमछे को काट रहा है, तो परेशान हो गए, ध्यान भंग हो गया, विचार करने लगे क्या करूं। तभी उनके एक मित्र ने सलाह दी कि इसे चूहे की समस्या का निवारण करना है तो एक बिल्ली पाल लो, बिल्ली चूहे को खा लेगा, कोई भी चूहा आएगा बिल्ली भगा देगा, सब समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। छोटी सी तो बात है, एक बिल्ली लानी है। उसने कहा गुड आइडिया, बिल्ली को लाते हैं। बिल्ली को लाकर रख दिया। बिल्ली के भय से चूहा तो नहीं आता था लेकिन बिल्ली म्याओ 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 जोर से चिल्लाती थी और जोर जब चिल्लाती थी तो इसका ध्यान भंग होता था। और ये विचार कर रहा है कि मैं ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बिल्ली मेरा ध्यान भंग कर रही है, अब क्या करूं। तब अपने मित्र को पूछा, मित्र ने कहा तो बिल्ली है भाई, भूखी है, कुछ तो उसको चाहिए। पहले चूहा आता था, अभी चूहा भी सतर्क हो गया नहीं आता, तो भूखा रहता है, अब इसको कुछ तो चाहिए, दूध पिलाना पड़ेगा। दूध कहां से पिलाऊं, दूध पिलाना है आसान है, एक गैया रख लो, एक गैया रख लो, गाय से दूध निकलेगा, दूध बिल्ली को पिला देना, बिल्ली शांत रहेगी और चूहा भी नहीं आएगा और आपका गमछा बढ़िया सूखता रहेगा। उसने कहा यह अच्छा आइडिया है, गैया मंगवा दी। अब कुछ समय वह गैया से दूध निकालने के लगा देते, ध्यान का समय कम हो गया। मित्र को पूछा क्या करूं, ये गाय को चारा देना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, दोहन करना पड़ता है, क्या करूं। उसमें तो कोई समस्या नहीं, एक घरवाली ला दो और वह ये सब कार्य किया करेगी। तो उसने कहा लेकिन मैं तो केवल नदी के तट पर रहता हूं, कोई बात नहीं, एक घर बना दो और घर बना दो और घर परिवार के साथ सुखी रहना, और जब पत्नी संतुष्ट रहेगी, गाय से दूध निकालेगी, दूध बिल्ली को पिलाएंगे, बिल्ली चूहे को देख लेगी, चूहा नहीं आएगा तो गमछा सूखेगा आपका। तो एक समस्या का समाधान करने के लिए कहां से कहां पहुंच गए देखो, ये हम सभी के जीवन की समस्या है। तो वास्तव में एक समस्या का समाधान करने जाओ तो एक उससे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। ये भौतिक जगत का लक्षण है, ये भौतिक जगत का नियम है। इसलिए ये न केन प्रकार ने जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट होना ही उपयुक्त है, अन्यथा इस जगत में इच्छाओं की पूर्ति की कोई सीमा नहीं। एक उद्योगपति थे, बहुत भारी परिश्रम करते थे, दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते थे, पहले एक फैक्ट्री, फिर दो फैक्ट्री, फिर दस फैक्ट्री, पूरे राष्ट्र भर में फैक्ट्री, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह उनका उद्योग फैल गया। तो एक दिन वह अपने फार्म हाउस में आए और फार्म हाउस में देखा कि एक वटवृक्ष के नीचे एक वहां आदिवासी बड़ा आराम से नीचे लेटा हुआ है, सर के नीचे हाथ दिया है, पैर वह ऊपर करके गुनगुना रहा है गाना। और ये देख के उद्योगपति को बड़ा द्वेष हुआ, देखो तो मैं ऐसा कठोर परिश्रम कर रहा हूं और ये आराम से बैठकर गाना गुनगुना रहा है। वहां पर कहने लगा देख तो क्या कर रहा है अपने जीवन में। बोले बस मैं यहां पर हूं पेड़ के नीचे, कोई समस्या है क्या। अरे क्या तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने आज तक कभी कोई फैक्ट्री डाला है क्या, तो नहीं भाई मैं तो ऐसा काम नहीं किया। अरे पता है क्या, मैंने देश विदेश में फैक्ट्रियां चालू की हैं, सब जगह मेरे प्रोडक्ट जाते हैं। उसने कहा अच्छा, तो इससे क्या प्राप्त करना चाहते हो आप? तो उद्योगपति ने कहा अरे इससे इतना धन राशि उत्पन्न हो गया कि हर जगह मेरी संपत्ति है। और अच्छा फिर क्या करोगे? अरे उससे जो संपत्ति से जो धन प्राप्त होगा, ये संपत्ति धन सब मैं अपने पुत्रों को दूंगा। बोला अच्छा फिर क्या? मैं पुत्रों को देने के पश्चात उनको ट्रेनिंग दूंगा, प्रशिक्षण दूंगा कि किस प्रकार इस बिजनेस को ये और डबल कर दे। बोला अच्छा फिर क्या होगा? फिर जब मेरे बच्चे और उनके पोते वगैरह सभी इस बिजनेस को ठीक प्रकार से संभालने लगे और मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, फिर मैं वो सब छोड़कर फिर यहां फार्म हाउस पर आऊंगा। बोला अच्छा फिर क्या करोगे? फिर मैं फार्म हाउस में आके ऐसे पेड़ के नीचे बिल्कुल हाथ पैर फैला कर लेट कर गाना गुनगुनाऊंगा। आदिवासी में करना भी वही तो कर रहा हूं मैं। तो जो आप इतना परिश्रम करने के बाद करने वाले हो, मैं वही अभी कर रहा हूं, तो आपको क्या समस्या है, आपको क्या आपत्ति है? तो वास्तव में पेट तो इतना ही है जिसमें चार चपाती आ जाए, थोड़ा सा चावल आ जाए, वस्त्र तो उतने ही है, शरीर तो बस 5.5 फुट 6 फुट का है, चाहे कितना भी प्रयास करो उससे अधिक आवश्यकताएं तो नहीं लगती। आपके पास एक घर है या 10 घर, रात को तो एक ही घर में सो सकते हैं, क्योंकि आपके 10 घर हैं, इसका मतलब ये नहीं रात को 11 से 12 एक घर में सो, 12 बजे उठ के दूसरे घर में जाओ, एक दूसरा अच्छा घर है वहां भी उसका भी प्रयोग करना चाहिए। या एक घर के अगर 15 कमरे हैं, इसका मतलब ये नहीं अलार्म लगा लगा के अलग अलग कमरे में जाके सो जाओ, क्योंकि घर में 15 कमरे हैं। तो वास्तव में जितना कुछ स्थान प्राप्त हुआ है, एक बार रात को सो गए तो किसको क्या पता पड़ता है कि मेरी संपत्ति क्या है और कितना स्थान है, और उसके पश्चात मृत्यु के बाद तो सभी को उतना ही प्रॉपर्टी चाहिए रहता है जलने के लिए। अर्थात यहां पर वामन देव जी बहुत उचित शिक्षा दे रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए संतोष को पालना बहुत आवश्यक है, अन्यथा असंतोष की भावना से धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब वामन देव मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, शुक्राचार्य अचानक उत्तेजित होते हैं, मुनि महाराज को देखकर कहने लगते हैं राजन इस छोटे से बालक की बातों में मत आओ, जानते नहीं ये कौन है? ये विष्णु है, ये हमारे शत्रु पक्ष में है, मीठी मीठी बातें कर रहा है लेकिन इसका उद्देश्य हमारे शत्रुओं की सहायता करना है। अरे विष्णु हमारी सारी संपत्ति ऐंठ लेगा, छीन लेगा, राजन सावधान रहो। और ये क्या करने वाला है? एषते स्थानमैश्वर्यम् श्रियं तेजो यशः श्रुतम् दास्यति याचिद्य शक्राय माया मानविको हरि। हे राजन ये आपकी संपत्ति, आपका धन, आपका स्थान, आपका पद, आपका ऐश्वर्य, आपकी शिक्षा, आपका सौंदर्य, आपकी पारिवारिक संपत्ति, इन सभी वस्तुओं को छीनकर हस्तगत करके शक्राय आपके परम शत्रु इंद्रा के हाथ में सौंप देगा और आप देखते ही रह जाओगे। माया मानव को हरि, इसलिए ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये सामान्य बालक नहीं, ये हरि है, ये हरि है, सब कुछ हर लेगा, इससे बच के रहो। इसलिए भक्त लोग कहते हैं हरि बोल, अर्थात जब हरि का नाम ले तो वास्तव में सब कुछ हर लेते हैं, हृदय के सारे दुख हर लेते हैं। और शुक्राचार्य इस प्रकार से वह चेतावनी दे रहे हैं। और ये कैसे करेगा? इसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और इसका रहस्य उद्घाटन ये धीरे धीरे करने वाले हैं। सर्वप्रथम ये अपने प्रथम पग में संपूर्ण ऊंचे लोगों को प्राप्त कर लेंगे, फिर द्वितीय पद में सारे अधो लोगों को वो प्राप्त कर लेंगे,